संबंध पीछे के दो श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तुझे जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहां शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए। कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ तो होते ही नहीं। अगर यहां किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 42वां श्लोक। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहां संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, परंतु इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मई संन्यास्य 18:57। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को यही रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो माम उपेष्यसि, पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहां कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। विशेष बात, शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे उन कर्मों के फल स्वरूप में जो परिस्थिति आती है उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता जो कर्म करता है कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं नित्य है इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु के अर्पित कर देता है तब साक्षात परमात्मा का अंश होने के कारण इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है। इसी को भगवान ने यह विमुक्तो माम उपेष्यसी कहा है। ये जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, ये दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, ये कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल और सहिष्णु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों भी प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप में नहीं होती प्रत्युत एक ही रूप में होती है। जैसा कि कहा है, लाल ने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदे महेशस्य नियंतुर गुणदोषयोः। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में मां की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीव के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाली परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। परिशिष्ट भाव, भगवान ने यान्ति मदियाजिनोपि माम 9:25 में जो बात कही थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा अशुभ शुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी अशुभ अशुभ होता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करना शुभ कर्म है और अपने स्वार्थ के लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म तो करता ही नहीं। और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता, उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है 15:7। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यहां समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामुपैष्यसि पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम 7:18 इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है।